डॉक्टर काइल डनहम जॉब एली फांस दो 2024 काइल डनहम और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर काइल डनहम हैं जो अय्यूब के पवित्र ऋषि एलिफास पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र संख्या दो है। प्राचीन निकट पूर्व और धर्मग्रंथ के संदर्भ में एलिपस की बुद्धि थियोडिसी। हमारे पहले व्याख्यान में हमने एदोम और विशेष रूप से एदोमाइट ज्ञान की परंपराओं के संदर्भ में एलिपस को देखा था। इस व्याख्यान में हम उन प्रमुख सिद्धांतों में से कुछ पर अधिक विशेष रूप से गौर करना चाहते हैं जिनमें उनका धर्मशास्त्र ज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण शामिल है, और अय्यूब की पुस्तक में प्रमुख ग्रंथों को देखना चाहते हैं जहां वह अय्यूब की स्थिति के बारे में बात करते हैं और उसे लाने की कोशिश करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए संकल्प का स्थान, और इसलिए मैं थियोडिसी के प्रति एलिपस के दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं, जो तीन शीर्षकों के तहत धार्मिक पीड़ा को ईश्वर के न्याय के साथ समेट रहा है। पहला है प्रतिकार धर्मशास्त्र, प्रतिशोध धर्मशास्त्र। अय्यूब की पुस्तक और प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान के बीच कई सहसंबंध हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिशोध का सिद्धांत प्राचीन मेसोपोटामिया के दार्शनिक दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। पूर्वजों के मन में उनके देवताओं के अस्तित्व और उन देवताओं ने मानव जाति पर कैसे शासन किया, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। बल्कि वैचारिक संघर्ष, जिसने प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान लेखन को जन्म दिया, ईश्वर की भूमिका की समझ को इसके कार्यान्वयन में प्रतीत होने वाली असंगतता के संबंध में टिप्पणियों के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। दूसरे शब्दों में, प्रतिशोध के ये सिद्धांत लोगों के जीवन में हमेशा फलीभूत होते नहीं दिखे। वैन टॉर्न इसे इस तरह से कहते हैं, मेसोपोटामिया के थियोडिसी ग्रंथों में जो दाव पर है वह प्रतिशोध मॉडल की वैधता और देवत्व की धारणा है जो इसका तात्पर्य है। मेसोपोटामिया के दृष्टिकोण के मूल में भाग्य का एक विशेष दृष्टिकोण था। बुकेलेटी का कहना है कि भाग्य कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है, बल्कि देवताओं के व्यवहार को अनुकूलित करने में एक अंतिम संदर्भ है, और इसलिए इसे अक्सर सुमेरियन शब्द मी के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसके बारे में वाल्टन का कहना है कि यह इन नियंत्रण विशेषताओं को संदर्भित करता है। वाल्टन यह कहते हैं, समानता के सामान्य प्राचीन निकट पूर्वी सिद्धांत के अनुसार देवता ताकत, दीर्घायु, सुंदरता, आकार और भूख में मनुष्यों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और मूल्य उनके मानव सेवकों के समान होते हैं। हम इसे प्राचीन निकट पूर्व के कई शिलालेखों में देख सकते हैं जो मानव व्यवहार को व्यवस्थित करने के संदर्भ में देवताओं और उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। एक शिलालेख है जिसका उल्लेख इन पंक्तियों के साथ किया गया है, लीजेंड ऑफ एरे। इस शिलालेख में कहा गया है, देश को उजाड़कर उठो, तुम्हारा मन कितना शांत होगा, तुम्हारा हृदय कितना प्रसन्न होगा। एरे के अंग उस व्यक्ति के समान थके हुए हैं जो सो नहीं सकता। क्या मैं उठ जाऊं? क्या मैं झूठ बोलता रहूंगा? वह अपने हथियारों से आश्चर्य करता है। वह कहता है, रैक में रहो, सिबिटी बेजोड़ नायकों को अपनी सीटों पर वापस ले जाओ जब तक कि आप उसे जगा न दें, एरे अपने कक्ष में लेट जाएगा। मनुष्य लगभग उसी तरह खुशी, थकान, अनिर्णय और आनंद का अनुभव करता है जैसे मनुष्य करते हैं। प्रतिशोध के क्षेत्र में कोई समानता की इस धारणा पर आधारित है कि देवता और मनुष्य भी सामाजिक मानदंडों की सराहना में हिस्सा लेते हैं, जिसमें दूसरों के प्रति उपकार की नैतिकता शामिल होती है, विशेष रूप से अपने से निम्न वर्ग या स्थिति वाले लोगों के प्रति। उदाहरण के लिए, यह बेबीलोनियन ज्ञान परिषदों में देखा जाता है जिसमें कर्मों के अनुसार प्रतिशोध को देवताओं, विशेष रूप से शामाश जो न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, के अनुरूप नैतिक मूल्यांकन से प्राप्त माना जाता है। यह यही कहता है, दीनदुखियों का अपमान मत करो, उन पर निरंकुश ढंग से व्यंग्य न करें। इससे इंसान का भगवान नाराज हो जाता है। शमाश को यह अच्छा नहीं लगता, वह उसका बदला बुराई से देगा। इस प्रकार देवताओं ने संकटग्रस्त लोगों के प्रति धर्मार्थ कार्यों को महत्व दिया, लेकिन जरूरतमंदों के प्रति तिरस्कार को अस्वीकार कर दिया। प्रसन्नता या विकर्षण दो ध्रुव हैं, जो ईश्वर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यह मानव का कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार को उस चीज के अनुरूप बनाए जो उसके ईश्वर को प्रसन्न करता हो, और इस समझ से प्रतिशोध की संहिता स्वाभाविक रूप से अनुसरण करती है। यदि कोई पीड़ित है तो भगवान नाराज हो जाते हैं। यदि किसी को पुरस्कार मिलता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्तिगत अवलोकन वह साधन बन जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का ईश्वर को प्रसन्न या अप्रसन्न होने का मूल्यांकन किया जाता है। वान टोरेन इसे इस प्रकार कहते हैं, मेसोपोटामिया के विद्वानों के पारंपरिक धर्मशास्त्र के अनुसार प्रतिशोध का सिद्धांत प्रकृति का एक नियम है, इसलिए बोलने के लिए देवताओं की ओर से प्रकटीकरण के कार्य की आवश्यकता नहीं है। इसे समानता के सिद्धांत पर अवलोकन, एक्सट्रपलेशन और अटकलों से देखा जा सकता है। इस प्रकार किसी के व्यवहार पर भगवान द्वारा रखा गया मूल्य निर्णय उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियों में देखा जा सकता था। जो लोग खुश और सफल हैं, उन्हें भगवान ने पुरस्कृत किया है। जो निराश और पीड़ित हैं, उन्हें दंड दिया गया है। इसी तरह प्रतिशोध का यह मानदंड अय्यूब के दोस्तों, विशेष रूप से एलीपस, जो अय्यूब का उत्तर देने में आदर्श और प्राथमिक परामर्शदाता है, द्वारा प्रचारित अधिकांश ज्ञान दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान के ये मानदंड उनकी सलाह में सन्निहित हैं। उदाहरण के लिए आरंभ में एलीपस ने अपने पहले भाषण में यह स्वर सेट किया। अय्यूब 4:6-8 में वह कहता है, क्या परमेश्वर का भय तेरा भरोसा और तेरे चालचलन की खराई तेरी आशा नहीं है? याद रखें कि वह कौन निर्दोष था जो कभी नष्ट हुआ था या सीधे लोगों को कहां काट दिया गया था? जैसा मैंने उन लोगों को देखा है जो अधर्म को जोतते और उपद्रव बोते हैं, वे वैसा ही काटते हैं। यह अनुच्छेद एलीपस के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मूल प्रदान करता है। यहां कोई एलीपस में व्यक्तिगत अवलोकन को मूल्य निर्णय के लिए निर्धारक के रूप में देख सकता है। वह कहता है, जैसा कि मैंने देखा है, साथ ही कार्य और परिणाम के बीच संबंध, जो निर्दोष था वह कभी नष्ट हो गया। जो अधर्म को जोतते हैं वही काटते हैं। व्यक्तिगत अवलोकन का महत्व और अय्यूब की दुर्दशा के बारे में एलीपज की व्याख्या उसके पहले भाषण के समापन पर विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है। अय्यूब 5:27 में एलीपज कहता है, देख, हमने इसका पता लगा लिया है, ये सच है, अपनी भलाई के लिए इसे सुने और जाने। इस दूसरे भाषण में एलीपज दुष्ट व्यक्ति को मिलने वाले प्रतिशोध के संबंध में एक विस्तृत और वाक्पटु प्रवचन प्रदान करता है। वह दुष्टकर्ता के पूर्ण विनाश को रेखांकित करने के लिए युद्ध और अकाल की उपमाओं का उपयोग करता है। वह दुष्टों की दुर्दशा का सारांश इस प्रकार देता है, क्योंकि भक्तिहीन की संगति बंजर होती है, आग रिश्वतखोरों के तंबू को भस्म कर देती है, वे विपत्ति की कल्पना करते हैं और बुराई को जन्म देते हैं, उनकी कोख में धोखा तैयार होता है, अत दुष्टों का आसन्न विनाश अटल है। अपने अंतिम भाषण में एलीपज ने इस प्रतिशोध सिद्धांत को एक तरफा लागू किया। अय्यूब अपने पाप के कारण ही पीड़ा में है। एलीपज यह कहता है, क्या तेरी बुराई बढ़ गई है? तुम्हारे अधर्मों का कोई अंत नहीं है। फिर भी वह अय्यूब की ओर मुड़ता है और आशा देता है कि यदि वह परमेश्वर की ओर लौटेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि धर्मी को पुरस्कृत किया जाएगा। वह अपने अंतिम भाषण के श्लोक 21-23 में यह कहते हैं, ईश्वर से सहमत हों और शांति से रहें, इसलिए आपका भला होगा। उसके मुंह से शिक्षा ग्रहण करो और उसके वचन अपने हृदय में धारण करो। यदि आप सर्वशक्तिमान के पास लौटेंगे तो आपका निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रतिशोध की अपनी समझ में एलीपस ने कई समान सिद्धांतों को शामिल किया है जो मेसोपोटामिया के परिप्रेक्ष्य के साथ संरेखित हैं, कि देवता पीड़ित के अवलोकन योग्य व्यवहार में अच्छे या बुरे का बदला लेते हैं। प्रतिशोध धर्मशास्त्र से परे दूसरी श्रेणी दैवीय मंत्रों के माध्यम से विलुप्तिकरण होगी। एलीफास के परिप्रेक्ष्य और मेसोपोटामिया के ज्ञान के बीच सामंजस्य का एक और क्षेत्र बुराई से छुटकारा पाने और देवता के अनुग्रह को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का उपयोग है। मेसोपोटामिया में इन प्रार्थना सूत्रों ने मंत्रों का रूप ले लिया जिन्हें धार्मिक विशेषज्ञ द्वारा पीड़ित पर आई बुराई को खत्म करने के लिए जोर से बोला जाता था ताकि उसे अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध किया जा सके। प्रार्थनाएं या मंत्र देवताओं का अनुग्रह पुनः प्राप्त करने के साधन थे। बेबीलोनियाई थियोडिसी में परामर्शदाता पीड़ित को इस प्रकार सलाह देता है, भगवान की दयालु हवा की तलाश करो। आपने एक साल में जो खोया है उसकी भरपाई आप एक पल में कर लेंगे। प्राचीन निकट पूर्व में उल्लेखनीय मंत्र श्रृंखला में से एक शेरपू मंत्र है, और ये तब निर्धारित किए जाते हैं जब पीड़ित को यह नहीं पता होता है कि उसने भगवान या मौजूदा विश्व व्यवस्था को कैसे नाराज किया है। अपनी दुर्दशा के जवाब में पीड़ित को संभावित पापों की एक लंबी सूची देनी होती है जिसमें धार्मिक वर्जनाओं के उल्लंघन से लेकर सामाजिक नैतिक मानदंडों का उल्लंघन शामिल है। पीड़ित इसके अतिरिक्त अनजाने शब्दों से मुक्ति के लिए अनुरोध जोड़ता है जिसने उसके खिलाफ बुरी गुप्त शक्तियों को जन्म दिया हो सकता है। एक विद्वान ने इसे इस प्रकार कहा है, दिलचस्प बात यह है कि जब अधिकारों का वर्णन किया जाता है तो सभी संभावित अपराधों को उन अधिकारों से छूट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। यह स्पष्ट है कि जिस पीड़ित को इन सेवाओं की आवश्यकता है उसने इतने सारे अपराध नहीं किए हैं। प्रचलित विषय यह नहीं जानना है कि किसी व्यक्ति ने क्या अपराध किया है या वह किस बुराई का दोषी है, वह तो बस सारी संभावनाएं गिना देता है। मंत्र में पीड़ित भगवान के समक्ष अपनी गलती और दुष्कर्म के प्रति अपनी अज्ञानता दोनों को स्वीकार करता है। शेरपू मंत्र में पीड़ित यह कहता है, या पुजारी बल्कि वह नहीं जानता कि भगवान के खिलाफ अपराध क्या है, वह नहीं जानता कि देवी के प्रति पाप क्या है। उसने परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसने देवी का तिरस्कार किया, उसके पाप उसके देवताओं के विरुद्ध हैं, उसके अपराध उसकी देवी के विरुद्ध हैं। भगवान से प्राप्त इस अनजाने तिरस्कार को इंगित करने के बाद पीड़ित अन्य लोगों के खिलाफ किए गए पापों को स्वीकार करता है। यद्यपि यह निश्चित है कि वास्तव में उन्होंने ये सभी कार्य नहीं किए, फिर भी वे इन्हें व्यक्तिगत पापों के रूप में गिनाते हैं। वह पारिवारिक कलह और घृणा, झूठ बोलना, भ्रामक व्यापार व्यवहार, सीमा चिन्हों को हटाना, जबरन वसूली, अनैतिकता, हत्या, जरूरतमंदों पर अत्याचार, गपशप, जादू टोना, धार्मिक वर्जनाओं का उल्लंघन, देवताओं की उपेक्षा, राजनीतिक अवज्ञा और टूटी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करता है। वह ऐसी बातें कहता है, उसने वह पैसा ले लिया जो उसे नहीं देना था, उसने वैध पुत्र को बेदखल कर दिया, उसने अपने पड़ोसी के कपड़े पहन लिए। जब कोई जवान आदमी नग्न होता था तो वह उसे कपड़े नहीं पहनाता था, इत्यादि। मंत्र का अंत पैंथियन में 50 से अधिक देवताओं से बुराई को मुक्त करने की अपील के साथ होता है, जिसके बाद भगवान और देवी से अंतिम प्रार्थना की जाती है। ऐसा ही एक डिंगर शादिबा मंत्र होगा जो मंत्रों की एक श्रृंखला है जिसे क्रोधित भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है। लैम्बर्ट का कहना है कि इनका उद्देश्य यही है। उनका कहना है कि हर मामले में इन प्रार्थनाओं का मुद्दा वक्ता के दुर्भाग्य या पीड़ा से उत्पन्न होता है। यह माना जाता है कि ऐसा हुआ था और व्यक्तिगत ईश्वर क्रोधित था। फिर उनका गुस्सा शांत करना पड़ा। पीड़ित फिर से अपने द्वारा किए गए सटीक अपराधों से अनजान लगता है, लेकिन वह संकट को हल करने के तरीकों का पता लगाने के लिए सभी संभावनाओं को सूचीबद्ध करता है। उसे यह स्वीकार करना है, मेरे अधर्म बहुत हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया। हे भगवान, क्षमा करो, मुक्त करो, अपने हृदय के क्रोध को दबाओ। मेरे अपराधों की उपेक्षा करो, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करो और मेरे पापों को पुण्य में बदल दो। पीड़ित देवता से क्षमादान और पाप की सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण की याचना करता है। वह कहता है, अपराध, अधर्म, अपराध और पाप के संबंध में मैंने अपने भगवान के खिलाफ अपराध किया है, अपनी देवी के खिलाफ पाप किया है। फिर वह भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के प्रयास में विशिष्ट पापों को गिनाने लगता है। वह कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया उसके विरुद्ध मैंने अपराध किया है। मैंने घृणित काम किया, सदैव बुराई की। मैं प्रचुर संपत्ति का लालची था। मैं बहुमूल्य चांदी चाहता था। अय्यूब की पुस्तक में मित्र यह भी सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि दैवीय मंत्र के माध्यम से अय्यूब को बहाल किया जा सकता है। इसे हम कई तरह से देखते हैं। सबसे पहले इन मंत्रों की पद्धति के अनुसार एलीपस बार बार अय्यूब को प्रार्थना में भगवान की ओर मुड़ने की याद दिलाता है। अपने पहले भाषण में एलीपज ने अय्यूब को उपदेश दिया, जहां तक मेरी बात है मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा और परमेश्वर को अपना काम सौंपूंगा। वह इस आग्रह के साथ इसका अनुसरण करता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण आशीर्वाद लाता है। अध्याय 5 श्लोक 17 में वह कहता है, देख, धन्य वह है जिसे परमेश्वर डांटता है। इसलिए सर्वशक्तिमान के अनुशासन का तिरस्कार न करें। यद्यपि प्रार्थना की स्पष्ट शब्दावली का उपयोग नहीं करते हुए सुझाव यह है कि यदि अय्यूब ईश्वर के तरीकों के प्रति समर्पण करेगा तो अनुमान के अनुसार यदि वह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी अय्यूब जुझारू है, इसलिए एलीपज को अपने दूसरे भाषण में अय्यूब द्वारा प्रार्थना में समर्पण करने से खतरनाक इनकार के संबंध में चेतावनी के साथ वापस लौटना होगा। अध्याय 15 श्लोक 12 और 13 में एलीपज कहता है, तेरा मन तुझे क्यों ले जाता है? तेरी आंखें क्यों चमकती हैं कि तू अपना मन परमेश्वर के विरुद्ध कर देता है और ऐसी बातें मुंह से निकालता है? निहितार्थ यह है कि शांत प्रार्थना के माध्यम से सुलह प्राप्त करने के बजाय अय्यूब अपने निरंतर विस्फोटों से ईश्वर को और अधिक अपमानित कर रहा है। तीसरे भाषण में एलीपज अय्यूब से ईश्वर को पुकारने के अपने अधिक शहरी आग्रह पर लौटता है। वह अपने भाषण के चरमोत्कर्ष में प्रार्थना का विस्तृत आह्वान करते हैं। अध्याय 22 श्लोक 21 से 23 में ईश्वर से सहमत हों और शांति से रहें, इसलिए आपका भला होगा। उसके मुंह से शिक्षा ग्रहण करो और उसके वचन अपने हृदय में धारण करो। यदि आप सर्वशक्तिमान के पास लौटेंगे तो आपका निर्माण हो जाएगा। एलीपज उस सुखद परिणाम के लिए एक अंतिम अनुरोध करता है जो पश्चाताप प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सर्वशक्तिमान में प्रसन्न होंगे और अपना चेहरा ईश्वर की ओर उठाएंगे। तुम उससे प्रार्थना करोगे और वह तुम्हारी सुनेगा। तुम अपनी मन्नतें चुकाओगे। यह स्पष्ट है कि एलीपज समझता है कि अय्यूब की दुर्दशा का समाधान पुनर्स्थापनात्मक प्रार्थना में निहित है, जो संभवतः इन खातों में पवित्र पीड़ितों द्वारा दी गई मंत्रमुग्ध प्रार्थनाओं के आधार पर बनाई गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारक महत्वपूर्ण हो जाता है। मेसोपोटामिया मंत्र श्रृंखला एलीफास के अय्यूब के साथ सबसे तीखे टकराव की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अपने तीसरे भाषण में एलीपज ने अय्यूब को उन बुराइयों की एक लंबी सूची बताई जो अय्यूब ने की थी। वह कहता है, क्योंकि तूने अपने भाइयों से सेंटमेंट बंधियां ली और उनके वस्त्र नंगा किए हैं। तूने थके हुओं को पीने को जल न दिया। तूने भूखों की रोटी छीन ली है। शक्तिशाली व्यक्ति के पास भूमि होती थी और पसंदीदा व्यक्ति उसमें रहता था। तूने विधवाओं को खाली हाथ भेज दिया और अनाथों की भुजाएं कुचल डाली गईं। अय्यूब 22:6-9। मंत्रोच्चार श्रृंखला के प्रकाश में यह संभव है कि चूंकि अय्यूब ने भगवान के सामने किसी भी पाप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, एलीपज जो कर रहा है वह कुछ उकसावे प्रदान कर रहा है। केवल पापों की एक रूपरेखा के बजाय जो वह कल्पना करता है कि अय्यूब ने किया है, एलीपज सामान्य बुरे कार्यों की एक सूची पेश करके अय्यूब के उलटने का रास्ता तैयार कर रहा है, जिसे अय्यूब स्वीकार कर सकता है। ऐसा करने पर अय्यूब को आश्वासन दिया जाता है कि यदि वह ज्ञात या अज्ञात बुराई को स्वीकार कर लेता है तो उसे दैवीय स्वीकृति बहाल कर दी जाएगी। तीसरी श्रेणी, जिसे मैं एलीपस को मेसोपोटामिया के ज्ञान के समानांतर अवतार के रूप में देखूंगा, वह मानसिक ज्ञान होगा। मेसोपोटामिया के शास्त्रियों और संतों और अय्यूब के दोस्तों के बीच एक अंतिम कड़ी मानसिक ज्ञान है। बुद्धि ईश्वरीय क्षेत्र से विशेष रहस्योद्घाटन से जुड़ी है। फिर से फटा हुआ मेसोपोटामिया के ज्ञान परिप्रेक्ष्य में अटकल के महत्व पर जोर देता है। उनका कहना है कि भविष्यवाणी के पारंपरिक विज्ञान का दावा आकाशीय उत्पत्ति से किया गया था। इसका पता एन्मा दुरंकी से लगाया जाता है, जो कभी सिप्पर के राजा थे, जिनके ज्ञान का श्रेय एक स्वर्गीय रहस्योद्घाटन को जाता था। अटकल ने व्यावहारिक मामलों के ज्ञान और पंथ के रहस्यों के बीच एक संबंध बनाया। बुद्धिमान वह आरंभ करता था जो उस अंतर को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम था। अटकल ने वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान की, इस प्रकार वास्तविकता के सांसारिक लेकिन अपरिवर्तनीय पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करने का एक रहस्योद्घाटन साधन तैयार किया। एक विद्वान ने कहा है कि वास्तविकता को मोड़ने के प्रयास के बजाय अटकल को उन कानूनों को समझने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है जो वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हैं। लेस्टर ग्रैब ने इसे इस तरह से कहा है, ऋषि अलौकिक और सांसारिक क्षेत्रों को उसी तरह ओवरलैप करता है जैसे वह पुजारियों, पैगंबरों, भविष्यवक्ताओं और इसी तरह के कार्यों को ओवरलैप करता है। हम इसे प्राचीन निकट पूर्व के कई ग्रंथों में देखते हैं, जिसमें ज्ञान अलौकिक क्षेत्र से रहस्योद्घाटन से जुड़ा हुआ है। लुडलुबेल नेमेकी में पीड़ित व्यक्ति पुनर्प्राप्ति के साधन के रूप में अटकल के महत्व को पहचानता है और इसलिए नाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस साधन की अपील करता है। लुडलुबेल नेमेकी यह कहते हैं, मेरे लिए हर दिन शगुन अंग भ्रमित और सूझने वाले होते हैं। भविष्यवक्ता और स्वप्न पुजारी का शगुन मेरी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। देवज्ञ अपने निरीक्षण से मामले की जड़ तक नहीं पहुंच पाया है, न ही स्वप्न पुजारी ने अपने मंत्रोच्चारण से मेरे मामले को स्पष्ट किया है। मैंने आत्मा का अनुग्रह मांगा, लेकिन उसने मुझे प्रबुद्ध नहीं किया। और मंत्रमुग्ध पुजारी ने अपने अनुष्ठान से दैवीय क्रोध को शांत नहीं किया। अटकल का यह विशेष ज्ञान विभिन्न माध्यमों से हो सकता है। एक स्वप्न के माध्यम से था, जिसमें भगवान ने स्वयं को प्रकट किया। उदाहरण के लिए लुडलुबेल नेमेकी में पीड़ित ने सपनों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसे बताया कि मर्दुक उसे बहाल करना चाहता है। वह स्वप्न अनुभव की वर्णक्रमीय आभा का वर्णन करता है। वह यह कहता है, उसका हाथ मुझ पर भारी था, मैं इसे सहन नहीं कर सका। मेरा उससे डर चिंताजनक था। उसका उग्र मुख बवंडर जैसा था। वह मेरे ऊपर खड़ा था। मेरा शरीर सुन्न हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस सपने के अनुभव के हिस्से के रूप में पीड़ित को अच्छी खबर देने के लिए एक जादू पुजारी का उपयोग किया जाता है, जिसे मर्दुक ने उसे बहाल करने के लिए उपयुक्त समझा है। इसमें यह कहा गया है, एक जादू टोना करने वाले पुजारी ने मुझे एक गोली लेकर भेजा है, मर्दुक ने मुझे भेजा है। मैं मर्दुक के पवित्र हाथों से समृद्धि लाया हूँ, मैं समृद्धि लेकर आया हूँ। तो स्वप्न का अनुभव दिव्य क्षेत्र से रहस्योद्घाटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और मेसोपोटामिया के ज्ञान में एक अभिन्न अंग था। बेबीलोनियन थियोडिसी में ऋषि परामर्शदाता इसी तरह सुरक्षात्मक आत्मा क्षेत्र के महत्व को पहचानते हैं। यह कहता है, जो अपने परमेश्वर की बाट जोहता है उसकी रक्षा करने वाला एक दूत है। लुडलू में पीड़ित के लिए उसकी दुर्दशा का एकमात्र निश्चित समाधान ईश्वर से मध्यस्थता प्रार्थना सलाह थी, जो एलिपस द्वारा दी गई सलाह के समान ही लगती है। अपने लिए मैंने प्रार्थना और प्रार्थना पर ध्यान दिया। मेरे लिए प्रार्थना विवेक थी, मेरे शासन का त्याग करो। क्षतिपूर्ति के ये साधन असहाय पीड़ित के लिए एकमात्र आशा थे, और अय्यूब की पुस्तक में हम ऐसी ही वास्तविकता देखते हैं। अय्यूब के दोस्तों के बीच अग्रणी परामर्शदाता ने अपने शुरुआती भाषण में रहस्योद्घाटन का एक अनोखा अनुभव बताया, जिसमें उसे आत्मा क्षेत्र से एक संदेश मिला, एक प्रेत से जो उसे आधी रात के दौरान दिखाई दिया था। अध्याय 4 में कहा गया है, अब एक शब्द चुपके से मेरे पास लाया गया, इसकी भनक मेरे कान को लग गई। रात के दृश्यों के विचारों के बीच जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाते हैं, भय कांपते हुए मुझ पर छा जाता था, जिससे मेरी सारी हड्डियां हिल जाती थीं। वह अपने आगंतुक को एक आत्मा और एक रूप के रूप में वर्णित करता है। लुडलू बेल नेमेकी में वर्णित एलिपस की रात्रि यात्रा के विवरण में समानता को देखते हुए यह काफी संभावना है कि एलिपस ने एक सपने का अनुभव किया। सपना एलिफास को मानव पाप की सार्वभौमिकता के बारे में सच्चाई बताने के लिए एक असाधारण रहस्योद्घाटन संदर्भ प्रदान करता है। एलिपस इस अनुभव का उपयोग अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने और अपनी सलाह में वजन जोड़ने के लिए करता है। एलिपस द्वारा विशेष रहस्योद्घाटन का उपयोग हिब्रू ज्ञान साहित्य के संग्रह में असामान्य है। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि संत रात में आध्यात्मिक क्षेत्र से आने की सूचना देते हैं। हालांकि एलिपस का इसका उपयोग मेसोपोटामिया के ज्ञान की पृष्ठभूमि में समझ में आता है। समानताएं यह सुझाव देती हैं कि एलिफाज मेसोपोटामिया की ज्ञान परंपरा के भीतर से काम कर रहा है। इसके अलावा एलिपस अय्यूब से परोपकारी देवदूत के चले जाने का संकेत देता है, जो एक निश्चित संकेत है कि देवता अप्रसन्न हैं। अपने पहले भाषण के मध्य बिंदु पर एलिपस ने पीड़ित के देवदूतीय ज्ञान की हानि और देवदूतीय मध्यस्थता की ओर संकेत किया। वह अय्यूब 5:01 में कहता है, अभी फोन करो, क्या कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा? आप किस पवित्र व्यक्ति की ओर फिरेंगे? उनके भाषणों में इस विचार के अन्य संकेत भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए उपचारात्मक पीड़ा के अपने विचार को उजागर करते हुए एलिपस उन राक्षसों से सुरक्षा का सुझाव देता प्रतीत होता है, जिनके बारे में आशंका है कि वे मानव जाति पर विनाश कर रहे हैं। अध्याय 5 में वह कहता है, तुम जीभ के चाबुक से छिपे रहोगे और विनाश के आने पर डरोगे नहीं, विनाश और अकाल पर तुम हंसोगे। यह सुरक्षा संभवतः एक सुरक्षात्मक आत्मा या देवदूत की उपस्थिति से आती है, जो ईमानदार लोगों पर नजर रखता है और भगवान के अनुग्रह को बनाए रखता है। शायद अय्यूब को बहाल करने के एलिपज के वादे में भी एक भ्रम पाया जा सकता है कि क्या अय्यूब को उसकी सलाह पर ध्यान देना चाहिए। तुम उससे प्रार्थना करोगे और वह तुम्हारी सुनेगा। अय्यूब 22:26। एलिपस के देवता की सर्वोत्कृष्टता को देखते हुए कोई यह मान सकता है कि यह एक आध्यात्मिक प्राणी की सुरक्षा के माध्यम से पूरा किया गया है। अंत में एलिपस ने क्षतिपूर्ति के एकमात्र निश्चित साधन के रूप में मध्यस्थता प्रार्थना की अपील की। वह कहते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं ईश्वर की खोज करूँगा और ईश्वर को मैं अपना उद्देश्य समर्पित करूँगा। अपने तीसरे भाषण की अंतिम विनती में एलीफास एक अंतिम आग्रह करता है। वह कहते हैं, ईश्वर से सहमत हो जाओ और शांति से रहो, इससे तुम्हारा भला होगा। परिणाम स्वरूप आप उससे प्रार्थना करेंगे और वह आपकी सुनेगा। तुम अपनी मन्नतें चुकाओगे। एलीपस की सलाह स्पष्ट रूप से लुलु बेलनेमेची और थियोडिसी के इन अन्य प्राचीन निकट पूर्वी कार्यों में पीड़ित के दृष्टिकोण के समान है। इससे पता चलता है कि एलीपस मेसोपोटामिया की ज्ञान परंपरा में दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने तर्क दिया है कि इसका उदाहरण एडोमाइट ज्ञान परंपरा में दिया जाएगा, जिसका वह एक हिस्सा था। अब जब हम बाइबल के ग्रंथों में एलीफास के भाषणों पर आते हैं, तो हमें कुछ चीजों पर प्रकाश डालने की जरूरत है जो उस संदेश को समझने में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है जिसे वह व्यक्त करना चाहता है। जैसा कि मैंने एलीफास के विभिन्न भाषणों को देखा और चर्च की व्याख्या के साथ साथ प्रारंभिक द्वितीय मंदिर यहूदी साहित्य में उनके स्वागत के इतिहास का अध्ययन किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एलीफास के कई पहलू थे जो महत्वपूर्ण मोड़ थे जिन पर या तो व्याख्याकार आए। एलीपस को एक कठोर आलोचक या एक सौम्य संत के रूप में देखें, और इसलिए आठ अलग अलग श्रेणियां थीं जिन्हें व्याख्याकार यह निर्धारित करने के लिए देखते थे कि एलीपस को एक अनुकूल चरित्र या एक प्रतिकूल चरित्र के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं। मैं तर्क दे रहा हूं कि यह बीच में कुछ है, इस अर्थ में कि वह मेसोपोटामिया की ज्ञान परंपराओं में निहित है, वह एक प्रतिकूल चरित्र की तुलना में एक अनुकूल चरित्र से अधिक है, लेकिन अंततः उसकी बुद्धि में कमी है, और इसलिए पुस्तक में एक कार्य यह दिखाना है कि सर्वोत्तम मानवीय ज्ञान परंपराएं भी ईश्वर की धार्मिकता और न्याय के संदर्भ में निर्दोष धर्मी पीड़ा के निहितार्थ को पूरी तरह से समझने में विफल रहती हैं। तो यहां वे कारक हैं जिन पर दुभाषियों ने ध्यान दिया। उन्होंने एलीपज के स्वर को देखा। हम उनके भाषणों के लहजे में देखते हैं, वह ऐसे तरीके से शुरू करते हैं जो सौम्य और नम्र लगता है, लेकिन भाषणों के अंत तक वह अय्यूब पर घिनौने पापों की सूची का आरोप लगा रहे हैं। तो उनके लहजे को समझना एक पहलू है। एक और चीज जिस पर दुभाषियों ने ध्यान दिया है वह है अय्यूब के पात्रों के बीच एलीपस की स्थिति का बड़ा उद्देश्य और भूमिका। दूसरे शब्दों में, क्या उन्होंने दूसरों के लिए एक उदाहरण, एक आदर्श स्थापित किया? और यदि हाँ, तो इसका पुस्तक में उसके महत्व से क्या संबंध है? अन्य लोगों ने उसके धर्मशास्त्र को रेखांकित करने वाले धर्मशास्त्रीय पंथ की प्रकृति को देखा। दूसरे शब्दों में, वे कौन से धार्मिक सिद्धांत थे जो उसे प्रेरित कर रहे थे? और फिर प्रमुख पहलुओं में से एक एलीपस के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की प्रकृति, उद्देश्य और मूल्य था, विशेष रूप से अय्यूब चार को देखते हुए। वास्तव में मैं यहां तक कहूंगा कि यह एक प्रकार का वाटरशेड मार्ग है। आप अय्यूब 4:5-11 में एलीपस को कैसे समझते हैं, यह वास्तव में यह निर्धारित करता है कि आप उसे पुस्तक में एक चरित्र के रूप में कैसे देखते हैं। बेशक अय्यूब 4:12-21 में उसके स्वप्न दर्शन के दौरान इस देवदूत या आत्मा की बातचीत को देखते हुए अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे। यह देखते हुए कि वह अध्याय 5 में उपचारात्मक पीड़ा के बारे में कैसे बात करता है, इसलिए वह भलाई और विकास के साधन के रूप में पीड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर प्रमुख वार्ताकार और बड़े राजनेता के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए अध्याय 15 में अपने दूसरे भाषण में वह ज्ञान परंपराओं की अपील करते हैं और ऐसा लगता है कि यह उन्हें संतों के बीच बड़े राजनेता का दर्जा देता है। और इसलिए यदि इसे उस संदर्भ में समझा जाए तो यह उसके बारे में एक उच्च दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। यह भी देख रहे हैं कि अध्याय 22 में एलीपज इस तथाकथित पाप सूची का उपयोग कैसे करता है। मैंने पहले इसका उल्लेख किया था, वह पापों की एक सूची से गुजरता है जो अय्यूब को कबूल करने के लिए एक मॉडल के रूप में प्रतीत होता है। तो यह समझना कि ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है, और फिर निस्संदेह यह देखते हुए कि किताब के अंत में यहोवा ने उसे क्यों डांटा। अय्यूब 42:7 में यहोवा अय्यूब से कहता है कि दोस्तों ने उसके विषय में ठीक से बात नहीं की है। इसलिए मैं एलीपस द्वारा दिए गए इन भाषणों के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में देखना चाहूंगा और कुछ प्रमुख पाठों को पढ़ूंगा जो हमें यह समझने में मदद करेंगे कि क्या हो रहा है। अय्यूब के पहले भाषण में अध्याय 4 और 5 शामिल हैं। अधिकांश टिप्पणीकार और व्याख्याकार मानते हैं कि यहाँ अनिवार्य रूप से 2 खंड हैं और वे अध्याय प्रभागों में काफी साफ सुथरे ढंग से आते हैं। पहला खंड अध्याय 4:2-21 तक होगा और दूसरा खंड अध्याय 5:1-27 तक होगा। इन खंडों को आमतौर पर विवाद भाषण की शैली के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इसे 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक तर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। यह बुद्धिमान लोगों और संतों के बीच की बातचीत की खासियत है जो एक आधार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह अदालत में वादकारियों के बीच भी होता है, साथ ही अक्सर भविष्यवक्ताओं और लोगों के बीच भी होता है जब भविष्यवक्ता वाचा के उल्लंघन के बारे में उनका सामना करने आते हैं। परिचयात्मक सूत्र का पालन करते हुए जो एलीपस के प्रत्येक भाषण की शुरुआत में होता है, जिसके बाद एलीपस ने उत्तर दिया और कहा कि अध्याय 4 में 4 उपछंदों के साथ 2 बड़े छंद हैं। इसे हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। अध्याय 4 में मूलतः 4 भाग हैं। एलीपज ने श्लोक 2 से 4 में अय्यूब को उसके पिछले धार्मिक कार्यों के आधार पर चेतावनी देते हुए शुरुआत की है कि यदि उसे पश्चाताप करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए तो उसके लिए आशा आगे है। इसलिए शुरू से ही एलीपज अय्यूब को दैवीय विलुप्तिकरण के स्थान की ओर, पश्चाताप और उसके पापों के त्याग द्वारा समाधान के स्थान की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे भाग में अध्याय 4:5-11 तक यह एलीपज के प्रतिशोधात्मक तर्क का सार प्रदान करता है कि निर्दोष दुष्टों की तरह नष्ट नहीं हो सकते, और एलीपज के लिए यह एक अटल सिद्धांत है कि धर्मी और दुष्ट के बीच स्पष्ट अंतर हैं। धर्मी लोग दुष्टों की तरह नष्ट नहीं हो सकते। अध्याय 4:12-16 में हम तीसरा भाग देखते हैं। यहीं पर एलीपज रात के दौरान हुए अपने श्रवण स्वप्न का वर्णन करता है, और इस खंड में वह अपने परामर्श की वैधता को प्रमाणित करने के लिए दिव्य रहस्योद्घाटन, इस जादुई ज्ञान को ला रहा है। वह अनिवार्य रूप से कह रहा है, मुझे पता है कि यह सच है क्योंकि न केवल मैं यह कह रहा हूँ बल्कि मुझे आध्यात्मिक दुनिया के क्षेत्र से विशेष रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ है। और फिर चौथा भाग अध्याय 4:17-21 है, और वहां हम इस विशेष रहस्योद्घाटन की सामग्री देखते हैं जो एलीपज को आत्मा से प्राप्त होता है। अध्याय 5 में 3 छंद हैं और हम एक क्षण में उस तक पहुंचेंगे। उन श्लोकों में वह परिणाम के बारे में बात करता है यदि अय्यूब पश्चाताप करने में विफल रहता है और दैवीय तुष्टिकरण प्राप्त करने में विफल रहता है। पहले भाग में अध्याय 4 पर वापस जाते हुए मैं एक पल के लिए छंद 5 से 11 पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इस खंड में एलीपज अपने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के प्रमुख धार्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। इस खंड को श्लोक 5 में 1 विरोधाभासी संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया है, साथ ही अय्यूब के पिछले कर्मों से उसकी वर्तमान स्थिति में संक्रमण भी है। यह बदलाव एलिपस को प्रतिशोध के अपने सिद्धांत को समझाने का अवसर प्रदान करता है। यह श्लोक 11 में समाप्त होता है, क्योंकि एलिपस मानवीय मामलों में दैवीय प्रतिशोध के बारे में अपने अवलोकन का समर्थन करने के लिए जंगली शेरों की एक उपमा का उपयोग करता है। जैसा कि पहले तर्क दिया गया है, जिस तरह से एक दुभाषिया इस खंड को पढ़ता है, वह काफी हद तक यह निर्धारित करता है कि वह एलिपस को कैसे समझता है। इस खंड में मुख्य परामर्शदाता अपनी थीसिस की रूपरेखा तैयार करता है और प्रकृति के स्पष्ट चित्रणों के साथ इसकी पुष्टि करता है, विशेष रूप से शेरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अय्यूब के लिए आशा है कि क्या उसे इस गूढ़ वास्तविकता के कारण पश्चाताप करना चाहिए कि केवल दुष्ट ही नष्ट होते हैं। अय्यूब विनाश के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अगर वह नाराज देवता की बात मान लेता है तो उसके पास रास्ता बदलने का मौका है। कार्रवाई का यह तरीका अकेले ही भगवान के क्रोध को शांत करेगा और अय्यूब को आशीर्वाद के जीवन में बहाल करेगा। एलीफाज इस खंड को शुरू करता है, लेकिन अब यह आपके पास आता है और आप इसका भुगतान नहीं कर सकते। यह तुम्हें छूता है और तुम निराश हो जाते हो। निश्चित रूप से आपका डर आपके आत्मविश्वास का स्रोत है और आपके तरीकों की अखंडता आपकी आशा है। याद रखें कि वह कौन निर्दोष था जो कभी नष्ट हुआ था या ईमानदार लोगों को कहां मिटा दिया गया है। जैसे मैंने उन लोगों को देखा है जो दुष्टता का बीज बोते और उपद्रव बोते हैं, वे वैसा ही काटते हैं। परमेश्वर की सांस से वे नष्ट हो जाते हैं और उसके क्रोध के झोंके से वे नष्ट हो जाते हैं। सिंह की दहाड़, क्रूर सिंह की ध्वनि और जवान सिंहों के दांत टूट गए हैं। शेर शिकार के अभाव में मर जाता है और शेरनी के बच्चे बिखर जाते हैं। इस खंड में एलिपस ने वाक्पटु प्राचीन निकट पूर्वी परामर्शदाता के स्वर को निर्धारित किया है। वह पीड़ित को उसके पाप के बारे में सही दृष्टिकोण की ओर ले जाएगा और अंतः नाराज देवता के प्रति आवश्यक समर्पण की ओर ले जाएगा। अपने तर्क में प्रेरक परिष्कार जोड़ने के लिए एलिफास कृषि और पशु जीवन के प्राकृतिक और पूर्वानुमानित पैटर्न से देखी गई कल्पना का उपयोग करता है। कुछ मायनों में यह बाद के यहोवा भाषणों की आशा करता है। इन्हें दुष्टों के भाग्य पर अपनी शिक्षा को मजबूत करने और अय्यूब को पश्चाताप करने की आवश्यकता को बढ़ाने, क्रोधित देवता को शांत करने के लिए ऋषि द्वारा शामिल किया गया है, और वे प्राचीन निकट पूर्व के सामान्य विषयों और उस संदर्भ पर आधारित हैं जहां से वह उभरता है। एलिपस के भाषणों का अगला महत्वपूर्ण भाग रात्रि स्वप्न दर्शन है, जो अध्याय 4 श्लोक 12 से 16 में घटित होता है। श्लोक 12 एक उपश्लोक का परिचय है। यह स्पष्ट रूप से विषय के बदलाव से चिह्नित है और साथ ही छंद 12 से 16 एक समावेशन बनाते हैं। एलिपस ने यहाँ अपने दूरदर्शी अनुभव को एक आध्यात्मिक प्राणी के साथ हुई मुठभेड़ के संक्षिप्त विवरण के साथ शामिल करना शुरू किया। श्लोक 12 में वह कहता है, एक शब्द चुपके से मेरे पास आया। रात के दृश्यों से उत्पन्न चिंताजनक विचारों के बीच मेरे कानों ने इसकी केवल एक फुसफुसाहट ही सुनी। जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाते हैं तो भय मुझ पर छा जाता है और कांप उठता हूं। मेरा पूरा ढांचा हिल गया। एक आत्मा मेरे चेहरे से गुजर गई। इसने मेरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। वह स्थिर खड़ा रहा, लेकिन मैं उसकी विशेषताओं को पहचान नहीं सका। मेरी आंखों के सामने एक रूप था, एक सन्नाटा, और फिर मैंने एक आवाज सुनी। इस ज्वलंत स्वप्न मुठभेड़ में एलिपस के पहले भाषण का यह खंड शामिल है। उन्होंने यहां परमात्मा के साथ अपने संबंध को दर्शाया है, और यह वास्तव में संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सबसे असाधारण अंशों में से एक है। उनका कहना है कि यह एक शब्द है जो उनके पास गुप्त रूप से आ रहा है। यह काफी असामान्य शब्द है। यह उसके पास छिपकर या गुप्त रूप से आया। कुछ लोगों का मानना है कि यह रहस्योद्घाटन के लिए एक तकनीकी शब्द है, लेकिन रहस्योद्घाटन का असामान्य विवरण इसके विपरीत प्रतीत होता है। बल्कि ऐसा लगता है कि वह बस यह कह रहा है कि भगवान ने उसे इस आत्मा के माध्यम से कुछ रहस्योद्घाटन दिया है, जिसका उस पर एक आश्चर्यजनक मनोदैहिक प्रभाव पड़ा। वह इन परेशान करने वाले विचारों का वर्णन करता है जो दृष्टि से उत्पन्न हुए थे। ऐसा करते हुए कई लोगों ने इस अवसर की तुलना पवित्र शास्त्र में गहरी नींद के लिए एक शब्द से की है, जिसका उपयोग अन्यत्र परमात्मा के साथ मुठभेड़ के लिए किया जाता है। विशेष रूप से उत्पत्ति 15 में इब्राहिम स्वयं गहरी नींद में सो जाता है जब प्रभु यहोवा उसके सामने प्रकट होते हैं। उत्पत्ति 15:12 में वर्णनकर्ता इब्राहिम इसका वर्णन करता है और एलीपज के चित्रण में कुछ उल्लेखनीय समानताएं हैं। उत्पत्ति 15:12 में जब सूर्य अस्त हो रहा था, इब्राहिम को गहरी नींद आ गई और देखो भय और महान अंधकार उस पर छा गया। उत्पत्ति और अय्यूब वृत्तांत दोनों ही दिव्य रहस्योद्घाटन संदर्भ का वर्णन करने के लिए गहरी नींद के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। दोनों रिकॉर्ड आतंक के भावनात्मक तत्व को दर्शाते हैं और इसलिए यहां इन विवरणों के बीच एक अंतर संबंध होने की संभावना है। इनका उद्देश्य संभवतः यह सुझाव देना है कि एलिपस का स्वप्न मुठभेड़ प्राचीन निकट पूर्वी संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से निहित है, जिसमें भगवान गहरी नींद और एक सपने के माध्यम से खुद को प्रकट करते हैं। एलिपस ने इसका वर्णन इस प्रकार किया कि भय उस पर हावी हो गया था, उसकी हड्डियां कांप रही थीं। यहां उनका तात्पर्य अपने संपूर्ण शरीर से है। उनका कहना है कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा करते हुए वह महत्वपूर्ण रूप से बताता है कि इस संदेश ने उस पर क्या प्रभाव डाला और वह संदेश जो वह अय्यूब को दे रहा है। इसका अगला भाग वह है जहां वह अपने दर्शकों को वह सार बताता है जो उसके सामने प्रकट किया गया था। यह अगले कई छंदों में होता है जो श्लोक 17 से शुरू होता है। आत्मा एलीपज को एक संदेश देता है कि वह फिर अपने आसपास के लोगों से संबंधित है। श्लोक 17 में वह कहता है, एक नश्वर मनुष्य परमेश्वर के सामने कैसे न्यायसंगत हो सकता है? कोई मनुष्य अपने रचिता के सामने शुद्ध कैसे हो सकता है? यदि परमेश्वर अपने सेवकों पर विश्वास नहीं करता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्खता का दोषी ठहराता है, तो जो लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी नींव धूल से बनी होती है, वे भोर से शाम तक पतंगे की तरह कुचले जाने के योग्य हैं, चूर्णित किया जा सकता है। वे बिना किसी को पता चले हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। यदि उनके तंबू की रस्सी तोड़ दी जाए तो क्या वे बुद्धि के कारण नहीं मरेंगे? एलीपस को दिए गए विशेष रहस्योद्घाटन की सामग्री को कभी कभी तुच्छ बताया गया है। यह एलिफास के लिए महत्वपूर्ण दैवीय प्रतिशोध के इस आवर्ती मूल भाव को फिर से उजागर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर धर्मी और दुष्ट को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कार और दंड देता है, और इसलिए यह आत्मा एलीपज के पास आती है और वह इसका उच्चारण करता है और एलीपज उसे फिर अय्यूब और अन्य लोगों को बताता है। एलीपज के पहले भाषण का अंतिम भाग जो महत्वपूर्ण है, वह उसका भजन है जिसमें पश्चाताप और ईश्वरीय फटकार को स्वीकार करने की चेतावनी दी गई है। अध्याय 5 में एलीपज ने अपना पहला भाषण अय्यूब से दैवीय फटकार स्वीकार करने, अपने पापों को स्वीकार करने और इस तरह दैवीय अनुग्रह पुनः प्राप्त करने के लिए एक शानदार और मार्मिक अंतिम अपील के साथ समाप्त किया। इन मेसोपोटामिया के सलाहकारों की तरह ही एलीपज का कहना है कि अय्यूब ने अपने कुछ पापों के कारण ईश्वरीय कृपा खो दी है, परंतु यदि वह इसे मान ले तो परमेश्वर उसे लौटा देगा। एलीपज यह कहता है, देखो वह मनुष्य क्या ही धन्य है जिसे परमेश्वर डांटता है। इसलिए सर्वशक्तिमान की ताड़ना को अस्वीकार न करो, क्योंकि वह पीड़ा तो देता है परंतु बांधता है, मारता है परंतु उसके हाथ चंगा करते हैं। वह तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा और 7 विपत्तियों में कोई विपत्ति तुझे छू न सकेगी। अकाल में उसने तुझे मृत्यु से और युद्ध में तू तलवार के प्रहार से और जीभ के कोड़े से छुड़ाया है, और जब विनाश आएगा तब तू न डरेगा। वह इसका विस्तार से वर्णन करता है कि अय्यूब का उद्धार कैसे होगा और उसके वंशज कैसे बढ़ेंगे, और फिर वह अपनी ज्ञान परंपरा की अपील के साथ समाप्त होता है। देखिए, हमने इसकी खोज की है और यह सच है। बेहतर होगा कि आप सुने और इसे अपने भले के लिए लागू करें। ऐसा कहने में एलीपस प्राचीन निकट पूर्वी विचार की वैचारिक मुद्रा से आकर्षित हो रहा है। उनका विषय पाप की स्वीकारोक्ति के साथ आने वाले लाभकारी प्रभाव से संबंधित है। परमेश्वर अय्यूब से नाराज हो गया है, परंतु यदि अय्यूब बस कबूल कर लेता है तो प्रभु उसे वापस लौटा देगा। हालांकि अय्यूब ईश्वर की ताड़ना को एक सुधारात्मक प्रभाव के रूप में व्याख्या करता है, फिर भी यहाँ अंतर्निहित प्रतीत होता है देवता के लिए जिम्मेदार सनक का एक तत्व। इसमें थोड़ी सी मनमानी है जो भगवान को सौंपी गई है। यह श्लोक 17 और 18 में सत्य है। वह पीड़ा तो देता है परंतु बांध देता है, वह मारता है परंतु चंगा कर देता है। मुद्दा यह है कि पीड़ित यह नहीं जान सकता कि भगवान कैसे नाराज हुए हैं, तो पीड़ित को बस मान लेना चाहिए। उसे पश्चाताप करना होगा, उसे अपना पाप स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर सर्वोच्च और संप्रभु है, और स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिशोध के नियम उसके विशेष मामले में सत्य थे, और ऐसा करने पर वह फिर से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा। फिर उनके दूसरे भाषण की ओर बढ़ते हुए हम अय्यूब 15 पर आते हैं, और अय्यूब 15 में वह फिर से प्रतिशोध धर्मशास्त्र और दैवीय रहस्योद्घाटन दोनों पर जोर देता है। इस दूसरे भाषण की शैली फिर विवादात्मक भाषण है। एक प्रथागत परिचय के बाद एलीपस के दूसरे भाषण में छंद 2 से 19 तक 2 छंद हैं। एलीपस ने अय्यूब को मित्र की सलाह को मानने से इनकार करने और उसके लिए स्पष्ट दैवीय नाराजगी को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई, जिसे वह विलुप्तिकरण के माध्यम से अनुभव कर रहा है। दूसरे शब्दों में अय्यूब एलीपस की सलाह पर ध्यान देने से इनकार कर रहा है। इस खंड को एक अर्धचियास्म के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जिसमें एलीपस अलंकारिक प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर और सीधे तौर पर उस पर पाप का आरोप लगाकर अय्यूब का उपहास करता है। वह अलंकारिक प्रश्नों के माध्यम से उपहास करता है, फिर पाप का आरोप लगाता है, और फिर वह एक ज्ञान शिक्षक बनने के लिए अपनी स्वयं की योग्यताओं को सारांशित करके समाप्त करता है। भाषण के दूसरे भाग में जो छंद 20 से 35 है, एलीपज एक बार फिर एदोमाइट ज्ञान की पवित्र सलाह से अय्यूब को चेतावनी देकर अपने प्रतिशोधी सिद्धांत की ओर मुड़ता है, एक परंपरा जिसमें एलीपज एक प्रतिष्ठित प्रस्तावक है। मैं यहाँ श्लोक 7 और इस दूसरे भाषण के निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और यहाँ इस खंड में एलीपज जो सलाह देता है, क्या आप पहले मनुष्य थे जो कभी पैदा हुए थे? क्या तुम्हें पहाड़ियों से पहले लाया गया था? क्या आपने परमेश्वर की सलाह सुनी है? क्या तुमने अपने पास इतनी बुद्धि जमा कर रखी है? आप क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते? आप ऐसा क्या समझते हैं जो हमारे लिए स्पष्ट नहीं है? हमारे बीच भूरे बालों वाले और बूढ़े दोनों ही तुम्हारे पिता से भी अधिक दिनों में बड़े हैं। क्या ईश्वर की सांत्वनाएं आपके लिए बहुत कम हैं? यहां तक कि यह शब्द भी सौम्य अंत के लिए अभिप्रेत है। तुम्हारा दिल तुम्हें क्यों ले जाता है? तुम अपनी आंखें क्यों चमकाते हो? क्योंकि तुम अपने मुंह से ऐसी बातें निकालकर अपना मन परमेश्वर के विरुद्ध कर देते हो। वह वर्णन करता है कि अय्यूब शुद्ध नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं है। परमेश्वर अपने पवित्र लोगों पर भरोसा नहीं करता। जो घृणित और भ्रष्ट है वह कितना बुरा है। वह आगे कहते हैं, जो हम तुम्हें बता रहे हैं वह बुद्धिमान लोगों ने घोषित किया है और अपने पिताओं से छिपाया नहीं है। इस खंड में एलीपस अपने दावों में बहुत अधिक स्पष्ट है। वह अपने वकील से क्रोधित है कि अय्यूब ने उसे दैवीय तुष्टिकरण प्राप्त करने में मदद करने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अलंकारिक प्रश्नों की इस श्रृंखला के माध्यम से अय्यूब का उपहास करते हुए वह अनिवार्य रूप से अय्यूब के अनुपालन से इनकार को कमजोर कर रहा है। वह कह रहा है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है कि जो कुछ मैंने तुम्हें करने की सलाह दी है उसका पालन करने से तुम इतनी चालाकी से इनकार कर देते हो। और वह यहाँ पहले आदमी के इस विचार की अपील करता है। वह कहता है, क्या आप पहले मनुष्य पैदा हुए थे? इस निर्माण का अर्थ संभवतः मानव जाति का पहला या प्रथम मनुष्य एडम है। कुछ लोगों ने इसे आदम के बारे में मिथकों से जोड़ा है, लेकिन यह संभव है कि एलीपज केवल यह कह रहा हो, क्या तुम इतने बुद्धिमान हो कि पहले मनुष्य के समान बुद्धिमान हो जाओ? प्राचीन दुनिया में जो प्राचीन था उसे गरिमा और अधिकार रखने वाला माना जाता था। जो हालिया था वह संदिग्ध व्युत्पत्ति का था। और इसलिए एलीपज कह रहा है, तुम इतने बुद्धिमान होने का दावा कैसे कर सकते हो? क्या आप पहले आदमी की तरह बुद्धिमान हैं? और निःसंदेह इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अय्यूब न केवल मूर्ख है बल्कि वह दुष्ट है और एलीपज की सलाह का पालन करने से इनकार कर रहा है। इसके बाद यह हमें अय्यूब 22 में तीसरे भाषण की ओर ले जाता है। तीसरा भाषण वह है जिसमें एलीपज दिव्य मंत्र और पाप के खंडन की अपील करता है। इस तीसरे भाषण में वह एक विवादित भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पहले प्रवचन की तरह एक भजन के कई तत्वों को शामिल करते हैं। उनका अंदाज भजनों की याद दिलाता है। भाषण की संरचना को वर्गीकृत करना कठिन है। इसमें छंद 2 से 5 में अलंकारिक प्रश्नों की एक प्रारंभिक श्रृंखला शामिल है, जिसके बाद भाषण का मुख्य भाग शामिल है। कुछ लोगों ने इसे 5 उपइकाइयों में विभाजित किया है, जिसमें पहले भाग में अय्यूब के खिलाफ आरोपों को निर्दिष्ट करने वाला एलीफास शामिल है। वह निर्दिष्ट कर रहा है कि अय्यूब ने कौन से पाप किए हैं। और फिर वह अय्यूब को धमकी देने लगा कि यदि वह आज्ञा मानने से इनकार करता रहा तो उसके साथ बुराई होगी। वह अय्यूब पर गलत दावा करने का आरोप लगाता है कि ईश्वर अज्ञानी है, दुष्टों के अंत के आधार पर अय्यूब को चेतावनी देता है और फिर अंत में बहाली के सशर्त वादे के साथ अय्यूब को निर्देश देता है। यदि वह विलुप्तिकरण के माध्यम से ईश्वरीय स्वीकृति चाहता है तो ईश्वर उसके पक्ष में हो जाएगा। मैं इस शुरुआत के एक हिस्से को उनके अलंकारिक प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पढ़ना चाहता हूँ, जो श्लोक 2 से शुरू होता है। क्या कोई मनुष्य ईश्वर के लिए उपयोगी हो सकता है? वास्तव में क्या अंतर्दृष्टि उसके लिए उपयोगी हो सकती है? यदि आप धर्मी हैं तो क्या इससे सर्वशक्तिमान प्रसन्न होगा? जब आप अपने आचरण में ईमानदार होते हैं तो क्या उसे लाभ होता है? क्या यह आपकी धर्मप्रायणता के कारण है कि वह आपके साथ मुकदमेबाजी में प्रवेश करने के लिए आप पर दोषारोपण करेगा? क्या तेरी दुष्टता बड़ी और तेरा अधर्म अनंत नहीं? क्योंकि तूने अपने भाइयों से अकारण प्रतिज्ञा ली है। तूने नग्न का वस्त्र उतार दिया है। तूने मूर्छितों को पीने से जल न दिया। तूने भूखों का भोजन रोक रखा है। जमीन ताकतवर आदमी की थी, पक्षपाती आदमी उसमें रहता था। तो भी तूने विधवाओं को खाली हाथ लौटा दिया, अनाथों की बाहें कुचल दी गईं। इसलिए फंदे तुम्हें घेर लेते हैं, अचानक भय तुम्हें निराश कर देता है। एलीपस इस अनुच्छेद में अपने निर्धारित अनुष्ठान की ओर मुड़ता है, जिसके द्वारा अय्यूब नाराज भगवान के साथ अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। अय्यूब को ज्ञात या अज्ञात पापों को स्वीकार करके इस खंड में एलीपज के नेतृत्व का अनुसरण करना है जो उसने किए होंगे। ऐसा करने में निहितार्थ यह है कि जैसे ही अय्यूब अपने पाप अपनी दुष्टता को स्वीकार करता है, भगवान बदले में अय्यूब के पक्ष में बदल जाएगा और उसकी नापसंदगी को दूर कर देगा। श्लोक 11 और 12 में वह अय्यूब को घेरने वाले अंधकार और पानी के बारे में बात करता है। अंधेरा है या नहीं, तुम्हें दिखता नहीं, पानी की बाढ़ तुम्हें घेर लेती है। क्या परमेश्वर स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर नहीं है? देखो तारे कितने ऊंचे हैं। यहां वह इस निरंतर निराशा का प्रतीक है जिसने अशांत, अंधेरे और ठंडे पानी की कल्पना के माध्यम से अय्यूब को घेर लिया है। ऐसी कल्पना जो शियोल और पानी के कोलाहल और निराशाजनक अंधेरे से कहीं और जुड़ी हुई है। इस कल्पना से एलिफाज फिर दैवीय उत्कृष्टता का गुणगान करने वाले एक भजन में बदल जाता है। दुष्टों ने भगवान से कहा, हमें अकेला छोड़ दो, हमें आपके तरीके जानने की कोई इच्छा नहीं है। वह सर्वशक्तिमान कौन है कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए? और एलीपज का तात्पर्य है कि अय्यूब उस दुष्ट वर्ग का हिस्सा है। उसकी एकमात्र आशा स्वीकृति, पश्चाताप और समर्पण के साथ ईश्वर की ओर मुड़ना है और ऐसा करके पुनः परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। तो संक्षेप में मैं तर्क दूंगा कि एलीफास अपने तीन भाषणों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए कई प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह प्रतिशोध धर्मशास्त्र है, उनके विशेष रहस्योद्घाटन में उनके ज्ञान अधिकार का स्रोत, उनका दैवीय मंत्र और तुष्टिकरण का निर्धारण, और उनका जोर है कि अय्यूब को अपने पाप को अस्वीकार करने और भगवान के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता है, और ऐसा करने पर उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। यह हमें निष्कर्ष और इस अंतिम मार्ग पर लाता है जहां यहोवा अन्य मित्रों में एलीपज को डांटता है। और प्रश्न यह उठता है कि यहां फटकार में एलीफास का विशेष रूप से उल्लेख क्यों किया गया है? अय्यूब 42:7 के इस खंड में यहोवा अय्यूब से कहता है कि एलीपज और उसके अन्य मित्रों ने पाप किया है। अय्यूब 42:7-8 इस प्रकार पढ़े, जब यहोवा ने अय्यूब से ये बातें कहीं, तब यहोवा ने तमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरे दास अय्यूब के समान ठीक बात मुझसे नहीं कही। और अब 7 बैल और 7 मेढ़े लेकर मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए होमबलि चढ़ाओ। अय्यूब मेरा सेवक तेरे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसकी प्रार्थना पर ध्यान दूंगा कि तेरे साथ तेरी मूर्खता के अनुसार व्यवहार न करूं, क्योंकि तूने मेरे दास अय्यूब के समान ठीक बात मुझसे नहीं कही। इन छंदों का अर्थ क्या है, यह निर्धारित करने की कोशिश में इस पाठ पर बहुत सारी चर्चा केंद्रित हुई है। वे पूर्ववर्ती मानवीय और दैवीय वाणी से कैसे संबंधित हैं? और यहोवा एलीपज और उसके अन्य मित्रों के विरुद्ध जो निंदा सुनाता है, उसका स्वरूप क्या है? वह एलीहू के विषय में क्यों चुप है? मुख्य मुद्दे वाक्यांश के अर्थ से संबंधित हैं। मेरे लिए कभी कभी इसका अनुवाद मेरे विषय में या मेरे बारे में किया जाता है, साथ ही प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या सही है कि आपने वह नहीं बोला है जो मेरे बारे में या मेरे बारे में सही है। यद्यपि यहोवा घोषणा करता है कि एलीपज और उसके दोनों मित्रों ने उसके दास अय्यूब की भांति मेरे विषय में या मेरे विषय में ठीक से बात नहीं की, तो भी यहोवा ने अय्यूब को यहोवा के भाषणों में डांटा है। उदाहरण के लिए अय्यूब 38:2 में यहोवा कहते हैं, यह कौन है जो बिना ज्ञान के शब्दों से युक्तियों को अंधकारमय कर देता है? और अय्यूब 42:1-6 में पश्चाताप करता है। परेशान करने वाला प्रश्न वह तरीका बन जाता है जिसमें अय्यूब ने ईश्वर के बारे में सही बात कही है, लेकिन दोस्तों ने नहीं। अय्यूब के भाषणों की विषय वस्तु या रूप उसके मित्रों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? और मित्रों को विशेष रूप से किस लिए डांटा जाता है? अधिक सटीक रूप से प्रासंगिक मुद्दा एलिपस की निंदा की प्रकृति में निहित है, और यह फटकार पुस्तक में उनकी भूमिका और उद्देश्य को कैसे स्पष्ट करती है, साथ ही यह उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में क्या कहती है। अधिकांश टिप्पणीकारों ने परंपरागत रूप से मेरे बारे में संकेत देने के लिए झूठ या मेरे पास वाक्यांश लिया है। उदाहरण के लिए एक विद्वान का तर्क है कि अर्थ मेरा है और उत्पत्ति 20:2 की ओर इशारा करता है। इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा के बारे में बात की थी। इसी तरह एडवर्ड डॉन किसी के विषय पर बोलने के अर्थ के उदाहरण के रूप में यिर्मयाह 40:16 की ओर इशारा करते हैं। तुम इश्माएल के विषय में झूठ बोल रहे हो। इस व्याख्या के साथ यहोवा एलीपज और अन्य मित्रों को मुख्य रूप से उनके भाषणों की सामग्री और उन्होंने भगवान के बारे में क्या कहा है इसके लिए फटकार लगाते हैं। उन्होंने सही ढंग से बात नहीं की है क्योंकि निहितार्थ से उनका धार्मिक अभिविन्यास गलत है और अय्यूब के प्रति उनका दृष्टिकोण हानिकारक है। हालांकि डैनियल टिमर की हालिया चर्चा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिवाद किया है कि वाक्यांश का अर्थ मेरे लिए अनुवादित किया जाना चाहिए और यह कि यह कई कारणों से संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर उनका सुझाव है कि फटकार का संबंध इस बात से नहीं है कि दोस्तों ने क्या कहा है, बल्कि इस बात से है कि उन्होंने क्या नहीं कहा है। हम इसे कई कोणों से देखते हैं। सबसे पहले पूर्वसर्ग एल, जिसका उपयोग यहाँ किया गया है, तत्काल संदर्भ में बोलने वाली क्रिया के बाद 3 बार उपयोग किया जाता है। पहली घटना बाद के उपयोगों के लिए निर्धारक है। श्लोक 7 में कथा कहती है, अब यहोवा द्वारा अय्यूब से ये शब्द कहे जाने के बाद, और यह वाक्यांश बोलने के लिए दोनों शब्दों का उपयोग करता है, देवर, साथ ही यह पूर्वसर्ग एल। इस पहले वाक्यांश में पूर्वसर्ग का अर्थ स्पष्ट रूप से है। यहोवा ने पूर्ववर्ती में अय्यूब के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं कहा है, परंतु उसने अपने भाषणों को अय्यूब की ओर निर्देशित किया है, और अधिकांश अनुवाद इसे इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तात्कालिक संदर्भ के रूप में यह प्रयोग निम्नलिखित छंदों में 2 आगामी घटनाओं के लिए निर्धारक है। यहोवा एलीपज और उसके अन्य मित्रों को इस कारण से डांट रहा है कि उन्होंने उससे ठीक से बात नहीं की, क्योंकि अय्यूब ने अपनी उतावलेपन की बातों पर पश्चाताप करके उससे ठीक बात कही है। दूसरा, प्राचीन संस्करण इस श्लोक में पूर्वसर्ग के अर्थ का समर्थन करते हैं या कम से कम इसका खंडन नहीं करते हैं और संबंधित के अर्थ से दूर इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए सेप्टुआजेंट इसे एनोपियन के साथ प्रस्तुत करता है जो पहले या आगे का सुझाव देता है, और वुलगेट में कोरम है जो पहले को मेरे बारे में या मेरे बारे में बताने के बजाय स्थानिक स्थान के रूप में सुझाता है। तीसरा, अय्यूब में पूर्वसर्ग एल2 के साथ बोलने के लिए क्रिया देवर की घटनाओं का एक अध्ययन यह साबित या प्रदर्शित करता है कि अप्रत्यक्ष वस्तु का एक संप्रदान कारक वास्तव में हर बार देखने में आता है, न कि संबंधित अर्थ के बजाय। टिमर का तर्क है कि पूरे हिब्रू धर्म ग्रंथों में इस निर्माण के साथ यही स्थिति है। चौथा, इस वाक्यांश के अर्थ का एक महत्वपूर्ण सुराग दिव्य भाषणों में पाए जाने वाले अय्यूब की आलोचना के साथ इस कथन के संबंध में पाया जाता है। ये अध्याय 38-41 में घटित होते हैं। यहोवा पहले ही अपने 2 विस्तारित टकराव वाले प्रवचनों में अय्यूब के शब्दों से निपट चुका है और उन्हें फटकार लगा चुका है। इस तथ्य के इन छंदों 42:7 और 8 के अर्थ के लिए 2 निहितार्थ हैं। अय्यूब ने जो सही कहा है, तीन मित्रों ने जो कहा है, उसकी तुलना में यहाँ यहोवा का संदर्भ संभवतः अय्यूब ने जो कहा है उसका उल्लेख नहीं करता है। ऐसे में संवाद कालानुक्रमिक और असंगत होगा। यहोवा ने पहले ही अपने पहले प्रवचनों में उन भाषणों की सामग्री को संबोधित किया है। ऐसा अधिक लगता है कि वह तुरंत पूर्ववर्ती कथन का उल्लेख कर रहा है, अर्थात 42:1-6 में अय्यूब का विस्तारित पश्चाताप। नंबर 2, चूंकि अय्यूब ने डांटा था, चूंकि यहोवा ने पहले अपने भाषणों की सामग्री के लिए अय्यूब को डांटा था, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि वह अब अनुमोदन का संकेत देता है मित्र के भाषणों की सामग्री की तुलना में उनकी सामग्री की। दूसरे शब्दों में इसकी संभावना नहीं है कि वह अब यह कहेगा कि अय्यूब ने जो कहा उसे वह स्वीकार करता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा लगता है कि उसने अपने शुरुआती भाषण में अय्यूब को डांटा था। ये कारक श्लोक 1-6 में अय्यूब के पश्चाताप के अधिक तात्कालिक संदर्भ में समाधान खोजने की दिशा में इशारा करते हैं। फिर अंत में उस वाक्यांश को देखते हुए, क्या सही है, दोस्तों ने वह नहीं कहा है जो मेरे लिए सही है। यह इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है कि पद 1-6 में अय्यूब का पश्चाताप दृष्टिगोचर है। जब इस कृदंत को बोलने के शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग केवल कुछ ही मामलों में किया जाता है, और जो निश्चित, स्थापित, स्थापित या भरोसेमंद है उसे स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है। उत्पत्ति 41 में यह शब्द एक ऐसे शब्द या पदार्थ को संदर्भित करता है जिसे ईश्वर द्वारा निश्चित किया गया है। व्यवस्थाविवरण 13:17 में यह एक शब्द या कथन है जो भरोसेमंद और निश्चित है, इसलिए कानूनी मामले में बाध्यकारी है। भजन 5 उस दुष्ट के बारे में बताता है जिसके मुंह से कोई भी सत्य जो विश्वासयोग्य या निश्चित नहीं है नहीं निकलता। इस संदर्भ में जो बात निश्चित या विश्वसनीय है उसका विपरीत मूर्खता है जो मूर्खतापूर्ण है। बाद वाले शब्द का प्रयोग अय्यूब में 2 किया गया है, एक अय्यूब की पत्नी जो 2:10 में मूर्ख महिला की भूमिका निभा रही है, और उन मूर्ख मूर्खों के संदर्भ के रूप में जो अध्याय 30:8 एलीपज और अन्य में अय्यूब के दुर्भाग्य का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि तैमूर स्वीकार करता है, ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि उसने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा है। उनकी मूर्खता यह है कि उन्होंने अय्यूब की तरह सच नहीं बोला। तो फिर यदि अय्यूब को उसके भाषणों की विषय वस्तु के लिए पहले यहोवा द्वारा डांटा गया है जैसा कि हमने सुझाव दिया है, तो फिर वह विश्वसनीय या निश्चित कथन क्या है जो अय्यूब ने मित्रों से अलग होकर दिया है? ऐसा लगता है कि संदर्भ से यह श्लोक 1-6 में उनके पश्चाताप के विस्तारित बयान को संदर्भित करता है। दोस्तों, पर यहोवा को कुछ निश्चित और भरोसेमंद शब्द नहीं बोलने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने अय्यूब की तरह थियोफनी के स्थल पर पश्चाताप करने के लिए खुद को विनम्र नहीं किया है। जिस अहंकार के साथ वे अय्यूब के पास आए और खुद को दैवीय प्रवक्ता की भूमिका का अहंकार दिया, उसके लिए अभी तक उन्हें फटकार नहीं लगाई गई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि एलीपज पर यहोवा ने जो अभियोग लगाया है वह उसके अहंकार और पश्चाताप में यहोवा के सामने खुद को विनम्र करने में विफल रहने से जुड़ा है। एक परामर्शदाता के रूप में जो अय्यूब को पश्चाताप और अनुष्ठानिक शुद्धिकरण की ओर ले जाना चाहता है, उसे स्वयं अब इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसने अपने मौखिक हमले के बीच में ईश्वर के सामने खुद को विनम्र नहीं किया है। इसलिए मैं तर्क दूंगा कि यहोवा की फटकार एलीपज के भाषणों की सामग्री से ज्यादा संबंधित नहीं है, बल्कि उस विशिष्ट अहंकार से संबंधित है जिसके साथ एलीपज ने खुद को मुखर किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि एलीपज ने जो कहा है उससे यहोवा पूरी तरह सहमत है, यह सुझाव देने के लिए संदर्भ में बहुत अधिक अर्थ होगा, बल्कि ऐसा लगता है कि यहोवा एलीपज के भाषणों की सामग्री के बारे में चुप है, लेकिन वह एलीपज द्वारा अपनाई गई सख्त मुद्रा से बहुत अप्रसन्न है। एलीपज ने परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से बोलने का अहंकार किया है, और यहोवा अब उसे इस अहंकार के लिए पश्चाताप करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार इस पुस्तक की प्रतिभा की झलकियां सामने आती हैं। प्राचीन निकट पूर्वी रीति रिवाज, जिसमें समर्पण और शुद्धिकरण की सराहना की जाती थी, जब एक परामर्शदाता पीड़ित को पश्चाताप की ओर ले जाता था, तो पासा पलट गया है। परामर्शदाता को अब स्वयं पीड़ित के तत्वावधान में नाराज देवता के साथ विनम्र मेलमिलाप की तलाश करनी चाहिए। यह एक प्राचीन कथानक मोड़ के समतुल्य है। इसलिए एलीपस के भाषणों के इन हिस्सों के इस पूर्ववर्ती विश्लेषण ने इस वास्तविकता को रेखांकित करने की कोशिश की है कि एलीपस ने एक प्राचीन निकट पूर्वी परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में अपने ज्ञान को प्राचीन मेसोपोटामिया के ज्ञान में निहित किया है, और ऐसा करते हुए उसने अय्यूब को दैवीय तुष्टिकरण के स्थान पर लाने की कोशिश की है, लेकिन असफल रहा है। इन जानकारियों को इकट्ठा करने से एलीपस की भूमिका और उद्देश्य की स्पष्ट समझ मिलती है। वह परामर्शदाता है जिसे अय्यूब को पश्चाताप की ओर लाना था, लेकिन अंततः वह ऐसा करने में विफल रहता है। इसलिए निष्कर्ष में मैंने यहाँ अय्यूब के मुख्य वार्ताकार के एक नए और कुछ हद तक सीमित पुनर्मूल्यांकन की पेशकश की है, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक में उनके संवाद चक्रों में पाया गया है। हमने मेसोपोटामिया के विश्व दृष्टिकोण में उनकी संभावित पृष्ठभूमि को देखा। हमने उनके स्वागत इतिहास और उनसे जुड़ी कुछ व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं के बारे में बात की। हमने एक मुख्य अंश पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अध्याय 4 छंद 7 से 11 तक को रेखांकित करता है। हमने देखा कि कैसे वह अपने धर्मशास्त्र में एक प्रमुख किरायेदार के रूप में प्रतिशोध को रेखांकित करने में अन्य मित्रों के लिए एक प्रतिमान प्रदान करता है। हमने एलीपस को प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखा। हमने उन्हें एक एडोमाइट ऋषि के रूप में देखा जो एक मुख्य परामर्शदाता की भूमिका से परिचित था। वह अपनी धार्मिक और ज्ञान परंपराओं में निहित है जो प्राचीन दुनिया भर में व्यापक थी, और हमने देखा कि ये प्रतिशोध धर्मशास्त्र, दैवीय मंत्र और गूढ़ ज्ञान के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। अंत में मैंने एलीफास के भाषणों के प्रमुख भागों का व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यह विश्लेषण मित्रों द्वारा प्रदान की गई सलाह की सामग्री और प्राचीन निकट पूर्व के अन्य संतों की सलाह के बीच इस संबंध को मजबूत करता है जो थियोडिसी भी प्रदान कर रहे थे। यह लिंक इस बात पर जोर देता है कि एलीपस को पुस्तक में एक सपाट एक आयामी चरित्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक परिष्कृत परामर्शदाता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके पास सर्वोत्तम मानवीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि है। और फिर भी इसके बावजूद एलीपज एक परामर्शदाता के रूप में विफल रहता है, क्योंकि अपने अहंकार में उसने ज्ञान के सच्चे स्रोत को स्वीकार नहीं किया है जो कि पूर्वजों की परंपराओं में छायादार सपनों में या प्राचीन काल के प्रथागत सफाई अनुष्ठानों में निहित नहीं है पूर्वी धर्मों के पास, बल्कि यह स्वयं यहोवा में निहित है। जैसा कि याहवे के भाषणों से पता चलता है, केवल ईश्वर ही उत्कृष्ट ज्ञान का स्रोत है जो मानव सीमा द्वारा उत्पन्न अंतिम प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। ईसाइयों के रूप में हमें यह स्वीकार करने के लिए पाश को बंद करना होगा कि सदियों बाद यहोवा की यह दिव्य बुद्धि खोई हुई मानवता को छुड़ाने के लिए पैदा हुए उद्धारकर्ता के रूप में फलीभूत होगी। एक मानवता जिसकी सर्वोत्तम अंतर्दृष्टि ईश्वर के लिए मूर्खता है, जैसा कि एक कुरिन्थियों 1 हमें बताता है। इस उद्धारकर्ता का उस व्यक्ति के रूप में स्वागत किया जाएगा जिसे भगवान ने हमारी बुद्धि, हमारी धार्मिकता, पवित्रता और मुक्ति बनाया है। वह है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सभी खजाने छिपे हुए हैं। जहां एलीपज ने एक ऋषि के रूप में स्थापना की, वहीं यीशु मसीह ने यहोवा के ज्ञान को परिपूर्ण किया। यीशु मसीह दिव्य और मानवीय ज्ञान का पूर्ण विलय हैं, अय्यूब की पीड़ा का प्रतिकारक हैं, मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता का उत्तर हैं। मसीह वास्तव में अद्भुत परामर्शदाता हैं, जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। यह डॉक्टर काइल डनहम हैं, जो अय्यूब के पवित्र ऋषि एलिफास पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र संख्या 2 है, प्राचीन निकट पूर्व और धर्मग्रंथ के संदर्भ में एलीपस की ज्ञान थियोडिसी।